ज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध छ अध्याय दो श्लोक 20, 21, 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच त एवं सो विनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम याम पाशा निर्मुच्य विप्रमृतो रमुमुचान। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ते वे विष्णुदूत एवं इस प्रकार सुविनिर्णीय सुनिश्चित करके धर्मम असली धर्म भागवतम भक्ति के रूप में नृप हे राजा तम उसको अजामिल को याम्यपाशा जमदूतों के पास से निर्मुच्य छुड़ाकर विप्रम ब्राह्मण को मृत्यु मृत्यु से अमुमुचन बचा लिया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे राजन तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को जमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। आगे
बढ़ाइए,
हो गया है ना। इति इस प्रकार प्रत्युदिता विष्णु दूतों द्वारा उत्तर पाकर याम्यः यमराज के सेवक दूतः दूत यात्वा जाकर यम अंतिकम यमराज के धाम यमराज्ञे यमराज के पास यथा भली भांति सर्वम सारी बातें अचक्षु विस्तार से सूचित किया। अरिंदम हे शत्रुओं के दमन करता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कुछ कह सुनाया। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रत्युदितः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को जमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए तथा उनको सारी घटना जो घटी थी वर्णन कर दी। आगे, द्विजः पाशात् विनिर्मुक्तो गतभि प्रकृतिम गतः वबन्दे शिरसा विष्णुः किंकरान् दर्शनोत्सवः। द्विजः बोलिए, ब्राह्मण अजामिल, पाशात् फंदे से विनिर्मुक्तः छोड़ दिए जाने पर गतभि भय से मुक्त प्रकृतिम गतः होश में आया चेत हुआ बबंदे अपना सादर प्रणाम अर्पित किया सिरसा अपना सिर झुकाकर विष्णु हो भगवान विष्णु के किंकरान सेवकों को दर्शन उत्सव उन्हें देह कर अतीव प्रसन्न। अनुवाद और तात्पर्य, यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथ से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तात्पर्य, वैष्णव भी विष्णु दूत हैं क्योंकि वे कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सके, इसीलिए एक वैष्णव बद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली होते हैं वे या तो विष्णु दूतों द्वारा या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सुंदर संवाद का श्रवण किए। संवाद परम भागवत धर्मराज जी के दूतों के बीच और दूतों और भगवान विष्णु के पार्षदों के बीच चल रहा था। आप घटना भली भांति जानते हैं कि अजामिल को लेकर के दो ग्रुप में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों अपने पक्ष को रख रहे हैं। दोनों पक्ष हैरत में था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धर्मराज जी के दूत बहुत हैरत में थे, बहुत परेशान थे कि हम लोगों को अपने कार्य करने से क्यों रोका जा रहा है। कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता, हमारे धर्म में बाधा डालता तो एक अलग बात है। ये दिखने में इतने सुंदर लोग हैं और ये लोग हमारे धर्म के पालन में बाधा डाल रहे हैं, ये हैं कौन? और उधर भगवान के दूत परेशानी अनुभव कर रहे थे कि जो पापी नहीं है, जिसका पाप समाप्त हो गया है, उस व्यक्ति को नरक में ले जाने के लिए जमराज के दूत आ गए, ये क्या बात है? जमराज के दूत तो पापी व्यक्ति को नरक ले जाते हैं, लेकिन जिसका कोई भी पाप बाकी नहीं है, जो एकदम निष्पाप है, उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आखिर ये हैं कौन? ये कोई चोर है, बदमाश है, कौन है आखिर? जो निष्पाप व्यक्ति है उसको क्यों वे परेशान कर रहे हैं? तो दोनों पक्ष को कौतुक है। दोनों अब प्रश्न उत्तर करने लगे तो उस पर अब सुखदेव गोस्वामी अपना टिप्पणी दे रहे हैं कि ते एवं सो विनिर्णीय। पहले जमराज जी के दूत प्रवचन किए थे और इसके बाद भगवान के दूत बोलने लगे, तो भगवान के दूतों के विषय में कह रहे हैं कि ते एवं सो विनिर्णीय। वे इस प्रकार निर्णय उपस्थित करके, निर्णय प्रस्तुत कर दिए। वे लोग मतलब जमराज के दूत कह रहे थे कि बहुत भारी पापी है, इस पर बहुत अधिक पाप है, इस अर्थ में कि पहले यह सदाचारी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने पिता का आज्ञाकारी था, सत्वगुण में रहता था और उसके बावजूद भी यह बहुत बुरा बुरा कार्य किया है। अपने पत्नी का अपमान किया है, माता पिता का वध किया है, वेश्या को घर में ला करके रखा है, अरे कौन कुकर्म नहीं किया है? और शुरू से प्रवृत्ति होती, निम्न स्तर का व्यक्ति होता तो एक बात थी, ये सदाचारी होकर के इतना पाप किया और यह दंड का पात्र है। जब ऐसे वे लोग कह रहे थे तो भगवान के दूत कहने लगे कि इसका पाप तो तभी समाप्त हो गया, यह ब्याज हार, यह अपने पुत्र को बुलाया, नारायण आय, हे नारायण अपने माँ के गोद से मेरे पास आओ, तो इतना या चार अक्षर बोला तो इसका पाप तो समाप्त हो गया है। तो वे कह सकते थे कि जरूर नारायण बोला, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोला, अपने पुत्र का नाम बोला। तो भगवान के दूत अब इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का नाम चाहे व्यक्ति कैसे भी बोले, स्वस्थ चित्त से बोले, अस्वस्थ चित्त से बोले, किसी परेशानी में बोले, प्रसन्नता से बोले, किसी तरह बोले, उसका फल आता है, पाप समाप्त हो जाता है। कई एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कल आप लोग सुन रहे थे कि अज्ञानत अथवा ज्ञानत, कोई जान बूझ करके या अज्ञान में कैसे भी भगवान का नाम ले तो पाप तो समाप्त होगा है। उदाहरण दिया गया आग का, आग के संपर्क में यदि सूखी घास आती है तो उसको जलना ही है, उसमें ज्ञान अज्ञान का कोई भेद नहीं है। तो उदाहरण दे रहे यह स्थापित करने के लिए कि जैसे सूखी घास का ढेर है, कितना हूँ अधिक, कितना हूँ बोझा बंडल घास है, यदि उस पर आग फेंक दिया जाए तो पूरा पूरा ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ये जो उदाहरण दिया गया, तो ऐसा कहीं शंका न हो जाए कि भगवान के नाम लेने से केवल पाप ध्वंस होता है, पाप का ध्वंस होता है, केवल पाप समाप्त होता है। इसीलिए वे दूसरा उदाहरण दिए, केवल पाप समाप्त करने की बात को स्थापित करने के लिए आग का उदाहरण पर्याप्त है। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि अज्ञानद अथवा ज्ञानद उत्तम श्लोक नाम यद संकीर्तत मघम पुंसो दहेद एधो यथानल। जैसे सूखी घास को अग्नि जला देता है तो उसे संकीर्तितम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो पाप तो समाप्त हो ही जाता है, बहुत जल्दी पाप समाप्त हो जाता है। कल इस विषय पर आप लोग चर्चा सुन चुके हैं, इसमें ज्ञान अज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये उदाहरण दिया गया है कि सूखी घास है और आग उस पर फेंक दिया, चाहे बालक फेंके, वृद्ध फेंके, गुस्सा में फेंके, प्रसन्नता में फेंके, इसका कोई असर नहीं होता है। अभी इस बात को कहने पर एक घटना का स्मरण हो जाता है। यही गर्मी का दिन था, हम लोग अपने गांव में मंदिर में बैठे हुए थे और बाउंड्री पर मूंज का पौधा है और हम लोग तो रूम बंद करके लू के चलते बैठे थे, जप कर रहे थे और तब तक चढ़चढ़ 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 आवाज़ सुनाई देने लगा। हम लोग बाहर आए तो सब मूंज जल रहा है। कैसे कैसे, तो कोई एक व्यक्ति बतलाया, अरे बस जा रहे थे, कोई व्यक्ति बीड़ी भी करके फेंक दिया। तो हम केवल यह कह रहे हैं कि किस चेतना में फेंक रहा है इसका महत्व नहीं है, लेकिन ये यह केवल उदाहरण देने से यह एक संशय मन में हो सकता है कि भाई पाप तो क्षय हो जाएगा, ठीक है, और कुछ लाभ होगा कि नहीं। तो इसी से एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यथागदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया, औषधि का उदाहरण दे रहा है कि कोई बहुत प्रबल औषधि है और यदृच्छया उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं, संयोग से किसी तरह उसको खा लिए, अजानतः अप्य आत्मगुणम, उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो कुरियन मंत्रों पे उदाहृत, तो जैसे औषधि का प्रभाव आ जाता है। आप औषधि को प्रभाव जाने या न जाने, कभी कभी डॉक्टर लोग जो दवा लिखते हैं तो पेशेंट है, रोगी है, और संशय में रहता है कि छोटा सीसी है, इतना ही कह रहे हैं, इससे रोग ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन वो उसका सेवन करता है तो उसका प्रभाव आ जाता है। तो उसी तरह कह रहे मंत्रोप्य उदाहृत, उसी तरह यदि मंत्र का उच्चारण किया जाए, खास करके नामात्मक मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उसका प्रभाव आ जाता है आत्मगुण। कि दूसरा उदाहरण इस बात को दिखाने के लिए दे रहे हैं कि भगवान का नाम बोलने से केवल पाप का ही क्षय नहीं होता है। हम भगवान के नाम के प्रभाव को न जानते हैं और उसका उच्चारण कर रहे हैं तो हम भगवान के प्रेम के तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पर आत्मगुणम, कोई दवा के गुण को जाने या न जाने उसका सेवन करेगा तो उसका प्रभाव आ जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान के नाम का कोई गुण जाने या न जाने तो उसका प्रभाव आता है आत्मगुणम, उसका अपना प्रभाव। कहने का आशय है कि व्यक्ति भगवान के तरफ बढ़ता है, कृष्ण प्रीति प्राप्ति के तरफ अग्रसर जरूर होता है। तो इसी बात को स्थापित करने के लिए ये दो उदाहरण दे रहे हैं। और ये कैसे भगवान के नाम का प्रभाव आ जाता है, और बीच पहले ही उनके प्रवचन में इसका उल्लेख किया जा चुका है, कई एक सूत्र दिया गया है। जैसे स्वस्तयनम नाम स्वस्तयनम हरे है, भगवान के नाम की यह विशेषता है कि स्वस्ति का अयन है, स्वस्ति का भंडार है। स्वस्ति सुअस्ति शोभन सत्ता, सुंदर स्थिति या अपनी स्वाभाविक स्थिति है, उसको स्वस्ति कहते हैं। कि इसका भंडार है, भाई कहाँ से शक्ति आ गई। उत्तम श्लोक नाम यत, ये उत्तम श्लोक का नाम है। उत्तम श्लोक, उत्तम जो तम से ऊपर है, या जिसके कीर्ति की या महिमा है कि उत्तम तम से ऊपर कर देता है, क्योंकि वह अप्राकृत है। जो साधारण नाम है उसमें नामी का गुण नहीं होता है। किसी व्यक्ति का या नाम है या वस्तु का नाम है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु का गुण नाम में हो। जैसे चीनी एक वस्तु है और चीनी ये शब्द है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वस्तु का गुण है वह शब्द में भी हो। लेकिन जो अप्राकृत चीज है, भगवान का नाम है, और उसके विषय में यह समझना चाहिए कि नाम और नामी में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। और नामी का गुण नाम में है, तो यह प्राकृत शब्द और भगवान के नाम में अंतर है। इससे प्राकृत जगत में हम कितना हूँ चीनी 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 कीर्तन करें तो हमारा मुंह मीठा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जगत के शब्द से भगवान के नाम की विशेषता है कि उसका उच्चारण करेंगे तो जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनम। और भगवान के नाम की यह शक्ति है कि भगवान के लीला गुण स्वरूप सबको आपके हृदय में स्फुरित करा देगा, सब नृत्य करने लगेंगे। आप भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे और चित्त रूप मंच पर भगवान का स्वरूप नृत्य करने लगेगा। यह भगवान के नाम की विशेषता है। तो हम यह कह रहे हैं कि त एवं सो विनिर्णीय, इस प्रकार कई एक पक्ष प्रस्तुत करके भगवान के दूत ये स्थापित किए भागवत धर्म को। और तम जाम्य पाशा निर्मुच्य, जब भगवान के भक्त प्रवचन करने लगे, पार्षद लोग प्रवचन करने लगे, तो जमदूतों को भी यह बात समझ में आ रही थी। अजामिल भी उस प्रवचन को सुन रहा था, उस पर भी प्रभाव आ रहा था, और जमदूतों को भी अनुभव होने लगा कि बात तो सही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विनिर्णीय, इस निर्णय को अपने पक्ष को स्थापित किए और तम जाम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्यु रमु मुमुचन कह रहे हैं कि केवल सिद्धांत स्थापित नहीं किए, अजामिल के गले में ये फंदा बांध चुके थे जाम्य पाशा निर्मुच्य, लेकिन भगवान के दूत इसको उससे फंदे से मुक्त किए और मृत्यु अमुमुचन और मृत्यु से बचा लिए। एक बहुत भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मृत्यु से बचा लिए भी ये कैसे संभव। कई एक लोग कहेंगे कि आखिर मृत्यु का समय आ गया था, मरने समय ही जमराज के दूत आए थे, तो अब मरते समय आए थे तो क्यों मृत्यु से बचा लिए, क्यों वह जीवित रहा। भाई जब जमराज के दूत आए हैं और वे गलती में हैं तो भगवान के दूत को अब भगवान के पास ले जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि मृत्यु अमुमुचन वो मृत्यु से बचा लिए। सिद्धांत समझना चाहिए कि सामान्य रूप से व्यक्ति का मृत्यु निश्चित होता है, ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय कई एक चीज निर्धारित हो जाता है, उसमें एक आयु भी है। कई एक चीज का निर्धारण हो जाता है, धन का, विवाह का, आयु का, क्या क्या बहुत चीज का निर्धारण हो जाता है। ये जरूर वसुदेव जी भी बोले हैं कि मृत्यु जन्मवता वीर, वो देह के साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। उसके टीका में लिखे हैं कि जन्म के समय ही विधाता ब्रह्मा जी ललाट पर लिख देते हैं कब मृत्यु होगी। इसी से जो वो ब्रह्म लिपि को समझने वाले हैं तो ललाट देह करके या हाथ देह करके व्यक्ति के मृत्यु को भी बतला देते हैं। हम लोग तो उस लिपि को नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग ललाट देह करके नहीं बतला पाते कि किसकी कितनी आयु है, लेकिन जो ब्रह्मा जी के अक्षर को पढ़ने में सक्षम है तो ये लोग ललाट देह करके भी बतला देते हैं, कई एक चीज की घोषणा कर देते हैं। तो जरूर मृत्यु का निर्धारण हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही सिद्धांत समझना चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत भारी पाप करता है तो उसके मृत्यु नजदीक आ जाती है, और यदि बहुत भारी पुण्य कर दिया, बहुत भारी उपकार कर दिया, तो उससे उसकी मृत्यु और दूर चली जाती है। सामान्य रूप से मृत्यु निर्धारित है, लेकिन फिर भी शास्त्र का वचन है कि पापिष्टा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंदका है, अपथ्य भोजनस्ते सम अकाले मरणम ध्रुवम। मृत्यु का निर्धारण है, काल का निर्धारण है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिस उसमें आप लिप्त हो गए तो पहले ही मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि पापिष्टा ये दुराचार, जो दुराचार में रत हैं, बहुत पापी हैं, देव ब्राह्मण निंदका, खास करके देवता या भगवान और ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं, अपथ्य भोजन और जो कुत्सित भोजन कर रहे हैं, जिस भोजन को नहीं करना चाहिए अपवित्र भोजन कर रहे हैं, तो तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। तो ये समझ लेना चाहिए कि अकाले मृत्यु के पहले ही उनके मृत्यु हो जाएगी, जो मृत्यु का समय है उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिद्धांत ये समझिए कि जो बहुत पापी होता है तो उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। तो भी अजामिल के केस में हम लोग देखें तो बहुत पापी था, तो इसलिए उसके पाप की गणना करके जमदूत वहां पहुंच गए थे। क्योंकि बहुत पाप करने से मृत्यु नजदीक हो जाती है। वास्तव में जो ओरिजिनल मृत्यु का समय था वह अभी नहीं आया था, लेकिन उसके पाप के गणना करके वे लोग अनुमान कर लिए कि इसी समय इसको मरना चाहिए, क्योंकि पाप से मृत्यु हो जाती है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह उल्लेख है, कोई स्वतंत्र रूप से तो इस विषय का वर्णन है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका उल्लेख बहुत जगह है। जैसे भगवान हस्तिनापुर में थे और कई एक महीना तक रहे तो भगवान के कार्यों का वर्णन कर रहे हैं सुत गोस्वामी, क्या क्या किए। उसमें एक कार्य कह रहे हैं कि घात इत्वा सतुराज्य, जो दुष्ट राजा थे उनका वध कराए। तो यह कह करके और तुरंत कह रहे हैं कि कचस्पर्श क्षतायुष, उन राजाओं के विषय में टिप्पणी दे रहे हैं कि कचस्पर्श क्षतायुष, वे जो दुष्ट राजा थे तो उनका वध करवाए। क्यों करवाए वध? कि द्रौपदी का केस का स्पर्श करने से उनकी आयु कम हो गई थी। कचस्पर्श क्षतायुष, द्रौपदी पतिव्रता नारी है और उसके केस को जबरदस्ती पकड़े थे, उसको खींचे थे, ये बहुत भारी पाप है। नारी का अपमान करना, खास करके साध्वी नारी का अपमान करना बहुत भारी पाप है। तो कह रहे हैं कि उस पाप के चलते उन दुष्ट राजाओं की आयु छीण हो गई थी। तो इस बात का संकेत मैत्रेय जी भी कर रहे हैं दूसरे जगह। अब एक प्रश्न उठाया गया है कि मैत्रेय ऋषि और उद्धव ने विदुर जी का कैसे मिलन हुआ, तो उस क्रम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, कई एक घटना का उल्लेख करके भी कह रहे हैं कि इन सब घटनाओं के चलते विदुर जी घर का त्याग कर दिए। तो कई एक घटनाओं में एक घटना कि यदा सभायाम कुरुदेव दिव्या केशा विमर्शम सुतकर्म गरियम, उसमें कह रहे हैं कि यदा सभायाम, वो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। यदा सभायाम कुरुदेव दिव्या, वो कुरुकुल की बहू है और उसका अपमान किया जा रहा था, वो रो रही थी। स्वाश्रय हरंत्या कुचकुम कुमानी, उसके विषय में कह रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुचकुम कुमानी, स्व अश्रय अपने आंसुओं से स्वाश्रय हरंत्या वे धो रही थी। क्या धो रही थी? कुचकुम कुमानी, अस्तन पर लगे हुए कुमकुम को धो रही थी। वो अब शब्द पर ध्यान दीजिए, अश्रु के विषय में कह रहे हैं कि स्व अश्रय अपने आंसुओं से। अच्छा, कुमकुम के विषय में स्व शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्वाश्रय हरंत्या कुचकुम कुमानी, नहीं कि अपने अश्रु से अस्तन पर लगे कुमकुम को धो रही थी। तब ये दोनों पक्ष में घटित हो सकता है। इसका एक आशय यह है कि अपने अश्रु से अपने अस्तन के कुमकुम को धो रही थी, आशय यह है कि इतना विलाप कर रही थी, इतने आंसू उसके आंख से निकल रहे थे कि उसके धारा से, उसके प्रवाह से उसके अस्तन में लगे कुमकुम धूल रहे थे। लेकिन स्व शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ अवकाश है, यह भी कहा जा सकता है कि अश्रु तो उसके गिर रहे थे लेकिन कुमकुम धूल रहे थे उन स्त्रियों का जिनके पति उसका अपमान कर रहे थे। ये साहित्य की भाषा है, स्वाश्रय हरंत्या कुचकुम कुमानी, अपने अश्रु से अपमान करने वाले के पत्नियों का कुमकुम धो रहे थे। सीधा आशय है, जो सधवा स्त्री है अपने पति के साथ है तो अपने श्रृंगार करती है, और पति का जब मरण हो जाता है सब श्रृंगार धो दिया जाता है, तो द्रौपदी विलाप कर रहे थे, आंसू उसके निकल रहे थे और श्रृंगार धुल रहा था उन लोगों के पत्नियों का जो अपमान कर रहे थे। तो हम यह कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह ये संकेत दिया गया है कि पाप करने से आयु कम हो जाती। जब कंस के दूतों का वर्णन किया गया है, उनके अत्याचार का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कह रहे हैं कि आराध गत मृत्यवः, वे कदन प्रिया, वे तो सब दैत्य लोग जन्म लिए थे, स्वभाव से ही साधुओं को दुख देने में उनकी रुचि थी और ऊपर से कंस जब आदेश दे दिया तो खूब उत्पात करने लगे, जहाँ गाय का स्थान था फूकने लगे, साधुओं के कथा कीर्तन का समय था उसको ढाहने लगे, कई एक प्रकार से अत्याचार करने लगे। और कह रहे हैं कि आराध आगत मृत्यवः, अब उनका जो ऐसा कर्म था तो जो मृत्यु दूर है वो भी नजदीक आ गई, क्योंकि सिद्धांत है कि आयु श्रियम जसो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदति क्रम। खास करके कोई व्यक्ति महत पुरुष का, सज्जन पुरुष के, भगवान के भक्त का अपमान करता है तो कई एक चीज उसका समाप्त हो जाता है, उसमें एक आयु भी है, उसका जस समाप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि कोई लोक मिलने वाला है, स्वर्ग इत्यादि, वह भी समाप्त हो जाता है, या इस संसार में कुछ सुविधा है वह समाप्त हो जाता है, और आयु, उसकी आयु भी समाप्त हो जाती है। तो आयु कम हो जाती है। और जगह, कई एक जगह इस सिद्धांत को दिया गया है। आप मुचकुंद महाराज की कथा सुनते हैं, और मुचकुंद महाराज गुफा में जा करके सो रहे थे, काल जवन जा करके उन पर लात मार दिया। मुचकुंद महाराज तो कुछ गलती नहीं किए थे, वे आंख खोले और आंख खोले दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। तो कोई दोषारोप कर सकता है कि तो मुचकुंद महाराज जला दिए ना, ना सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि ना सोपी भस्मी कृतो नूनम आत्मीय नैव पाप मना, वो तो अपने पाप से भस्मीभूत हो गया, जल गया। एक साधु पर, भगवान के भक्त पर जाकर के लात मारना ये बहुत भारी पाप है ना, तो उसके चलते भस्म हो गया। आप सगर के पुत्रों के विषय में सुनते हैं कि वे कपिल देव का अपमान किए, कपिल देव तो कुछ किए नहीं, वे तो ध्यान में थे, लेकिन भगवान को जाकर के चोर 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 ये घोड़ा लेकर के आया है, घोड़ा तो कोई इंद्र जाकर के बांध दिए थे, वे तो ध्यान में थे, लेकिन भगवान को जो शुद्ध सत्व में है उनको ये चोर है ये चोर है ऐसा कह रहे थे, तो उसके चलते वो अपने पाप से जल गए, वो भगवान का उसमें कोई दोष नहीं है। तो हम यह कह रहे हैं कि सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति बहुत पापी है तो उसकी आयु कम हो जाती है। अजामिल भी बहुत भारी पापी था, तो उसके अनुसार उसकी आयु कम हो गई थी। तो आयु कम हो गई थी उसी समय यमराज के दूत उसको ले जाना चाहते थे, लेकिन अब उनसे गलती क्या हुई, वो भगवान का नाम बोला है तो भगवान का नाम बोला तो पाप सब समाप्त हो गए, तो जब पाप ही समाप्त हो गए तो आयु क्यों कम होगी। आयु तो कम हो रही है पाप के कारण, तो जब पाप समाप्त हो गया तो आयु भी ओरिजिनल पर रहना चाहिए, शतायु है 100 वर्ष उसका जीवन है, तो पाप आयु तो कम होगी नहीं, लेकिन भाई ऐसा हुआ क्यों। तो आचार्यों का वचन यही है, भ्रांत्या, उसके पाप पर ध्यान करके गणना तो कर लिए, लेकिन जो पक्ष था भगवान के नाम का उसको नहीं गणना में लाए। तो आज के शब्द में हम कह सकते हैं कि डाटा को अपडेट नहीं किए या रिफ्रेश नहीं किए, उनको कोई निर्णय करना है तो अपडेट करके तब निर्णय लेना चाहिए। तो जैसे कंप्यूटर के लोग बोलते हैं, हमको तो बहुत नहीं जानकारी है, अपडेट शब्द रिफ्रेश कर है, कभी कभी देखते हैं हम लोग रेलवे का सीट का देखते हैं तो अभी वो आरएसी अरे अपडेट करके देख रहे हैं तो अपडेट करने पर दूसरा आ जाता है, तो ये लोग अपडेट नहीं किए थे। लेकिन अब तो भगवान के दूतों ने स्थापित कर दिया कि जब ये पापी ही नहीं है तो इसकी आयु क्यों कम होगी, आयु इसकी कम नहीं होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि मृत्यु विप्रम अमुमुचन, उस ब्राह्मण को मृत्यु से बचा दिया। अब ये तो अजामिल की बात हुई, विष्णु दूत उसको बचा लिया। अब एक प्रश्न होगा कि अब जमदूत लोग क्या किए, तो कह रहे हैं कि इति प्रत्युदिता जाम्या दूता यात्वा यमांतिकम जमराज्ञ यथा सर्वम आच चक्षु ररिंदम, कि जमराज के दूत जमराज जी के पास गए और आच चक्षु सर्वम, वो जमराज जी से जो घटना हुई थी यथावत उसको कह दिए, संबोधन करे अरिंदम, आप तो शत्रुओं का दमन करने वाले राजा हैं, आपको पता है कि कोई छोटा अधिकारी कोई घटना को ठीक ठीक हूबहू सबसे पहले अपने बड़े अधिकारी को बतला देता है। वे कह रहे हैं कि जमराज के दूत जा करके जो जो घटना हुई ठीक ठीक जमराज जी को बतला दिए। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में कह रहे हैं, व्याख्या में कह रहे हैं कि प्रत्युदित, जमराज के दूतों का कोई भी कार्य बाधित नहीं कोई कर पाता है, लेकिन विशेष घटना थी कि उनके कार्य में बाधा पड़ गए, तो सबसे पहले इसकी सूचना जा करके वे अपने अफसर को जमराज जी को दिए। और द्विज पाशाद विनिर्मुक्त गत भी प्रकृतिम गत बबंदे सिरसा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव, अजामिल क्या हुआ, अब इस बात को कह रहे हैं कि द्विज व अजामिल व ब्राह्मण पाशाद विनिर्मुक्त, वो जमदूतों को देख करके बहुत भयभीत था, एकदम भय से आक्रांत था, भय के मारे नारायण शब्द पुकारा था। लेकिन कह रहे हैं कि जब पास निकल गया तो गत भी उसका भय समाप्त हो गया और प्रकृतिम गत अपने स्वभाव में आ गया, अपने प्रकृति में आ गया। वे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण है, तो अब उसका भय समाप्त हो गया और सत्वगुण में स्थित हो गया। बबंदे सिरसा विष्णु, सबसे पहले भगवान के दूतों को झुक करके अपना मस्तक उनके चरणों में डाल करके नमस्कार किया, किंकरान दर्शनोत्सव, नहीं तो उसको बहुत प्रसन्नता थी, उन्हें भगवान के परिकरों को देख करके वो बहुत प्रसन्न था। प्रसन्नता के दो कारण थे, एक तो उस पर जो संकट थे उन्हीं के चलते वो संकट दूर हो गई, भय समाप्त हो गया, इसलिए प्रसन्न था, या उनका दर्शन करके उनका वेशभूषा तिलक वस्त्र देख करके स्वाभाविक के दर्शन से उसको बहुत प्रसन्नता थी, तो सबसे पहले उनको प्रणाम किया। अब वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके पहले ही भगवान के दूत अंतर्हित हो गए। वो क्यों अंतर्हित हुए और फिर अजामिल क्या किया, इस सब बात को आप लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।